ग्यारह मैं कर्ण के साथ कापिली नगर पहुंचा। मेरे साथ दुशासन, निशंगी, अग्रयायन, दुर्विमोचन, विकर्ण, अयोबाहु, विभित्सु, विकट, क्रात और दंडधर जैसे 10 अनुज थे। स्वयंवर शांतिपूर्वक संपन्न हो जाने वाली विधि नहीं होती, इसके लिए कभी कभी दो दो हाथ भी करने पड़ते हैं। तदर्थ सहायता के लिए मैंने अपने 10 भाइयों को अपने साथ ले लिया था, लेकिन मेरा सबसे अधिक विश्वास कर्ण पर था। मेरे मनोरथ को साकार करने के लिए वह पराक्रमी वीर अपने प्राणों का मूल्य चुकाने तक को तत्पर था, इसीलिए मैं उसको आग्रहपूर्वक पांचालों को इस राजनगर में ले आया था। पूर्वों की ओर संग्राज कर्ण ही मत से भेद करने वाला था। हमको विश्वास था कि वह प्रण अवश्य जीतेंगे। हमारे साथ अश्वत्थामा और शकुनी मामा भी थे। 16 वर्षीय कर्णपुत्र सुदामन भी हट करके साथ आया था। कापिले नगर की सीमा पर गंगा और बहुधा के संगम पर पांचालों के अमात्य वीर बाहु और महाराज द्रुपद ने हम सबका भव्य स्वागत किया। द्रुपद पुत्र युवराज धृष्टद्युम्न ने तो दुशासन के सामने आकर उसको कसकर आलिंगन में ही भर लिया। मैंने उसके कर्ण का परिचय देते हुए कहा, ये है अंगराज कर्ण। कर्ण ने अपनी गुलाबी रंग की हथेलियां जोड़कर उसको वंदन किया। दोनों कर्ण के कानों में कुंडलों की ओर क्षण भर एक टकटकी बात कर देखता हुआ धृष्टद्युम्न हंसता हुआ स्वाभाविक ढंग से बोला, ऐसा कौन है जो उनको न जानता हो। हस्तिनापुर में सर्व लक्ष्य भेद हम सब ने प्रत्यक्ष देखा है, वह घटना है, वह दिन है, मैं तो इस जन्म में भी नहीं भूल सकता। धृष्टद्युम्न का कथन वास्तविक था, वह सबको अच्छा लगा। मुझको धृष्टद्युम्न की देह यष्टि बहुत ही अच्छी लगी। वह फूलों की लदे हुए डालीदार मधु वृक्ष की तरह दिखलाई पड़ रहा था। चेहरा हानों की ओर समुचित होता गया था। उसका कर्ण लालिमा लिए हुए गौरव था। मैंने उसको मुख से क्षण भर यज्ञ सेना की तुलना की। संप्रति यज्ञ सेना के सिवा मुझको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। हम लोगों ने नगर में प्रवेश किया। अपनी प्रिय युवरागी के स्वयंवर के निमित्त नगरजनों ने संपूर्ण नगर को बड़े कौशल सजाया था। स्थान स्थान पर पताकाएं और बंधन मार लगाए गए थे। नगर के सभी प्रशस्त चौक विविध रंग के वन पुष्पों की मालाओं से सजाए गए थे। स्थान स्थान पर जल के कृत्रिम फव्वारे बनाए गए थे। सभी आंगनों में ललनाओं ने केसर मिश्रित जल से लीप कर सुंदर अल्पनाएं चित्रित की थी। नगाड़े, तुरही और मृदंगों से वातावरण का कण कण थिरक रहा था। हम लोगों के नगर में प्रवेश करते समय नगरजन हमारे दर्शनों के लिए मार्ग के दोनों ओर खड़े हो गए थे। वे कुरुओं के वैभवशाली और पराक्रमी कुल का सहज उल्लास और जयघोष कर रहे थे। इतना आश्चर्यजनक दृश्य मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था जितना आज तक मैंने कभी किसी नगर में नहीं देखा था। अनेक गृहों के उच्च सौधों पर नगर की ललनाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उसमें से कुछ तो उंगली सीधे हमारे रथ की ओर निर्देश कर रही थी। मेरे रथ में मैं, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण, हम तीन ही थे और सब रथ पीछे थे। थोड़ी देर बाद सब बातें मेरी समझ में आ गई। कर्ण के अप्रिय सौंदर्य की ख्याति पांचाल के राज्य तक पहुंच चुकी थी। भले ही दूर से दिखाई दे, लेकिन कर्ण कैसा आया देखने के लिए स्त्रियां आतुर थी। उस बेचारे को इतना तनिक भी ज्ञान नहीं था। नितान सरल भाव से मेरी दाई ओर खड़ा था। उसके देह पर पड़ा हुआ सुवर्ण धागों की छठा सी उत्तरीय सूर्य किरणों से चमक रहा था। मैंने यूं ही उससे कहा, कर्ण तुम्हें अब स्वयंवर में भाग लेना है। अब रथनीड़ पर खड़े मत रहो, भीतर बैठ जाओ और धनुर्वेद का चिंतन करो। मेरे परामर्श को उचित मानकर वह रथ में बैठ गया। इससे शायद अनेक स्त्रियां निराश हो गई। मुझको अपनी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। एक सुतपुत्र को देखने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वास्तव में उनको तो मेरे दर्शन करने चाहिए थे या फिर दुशासन के, क्योंकि यदि मैं चाहता तो अपने रथ के साथ सत्यसेन को उसके स्थान से हटाकर उस स्थान पर कर्ण को बैठा सकता था। कुछ भी क्यों न हो, उसका वंश परंपरागत व्यवसाय तो सारथ कर्म ही था। सूर्योदय के साथ हम लोग पांचालों को शोभावंत राजभवन के समीप पहुंचे। स्वयंवर का भव्य मंडप दृष्टिगोचर हुआ। उस मंडप के आसपास लोगों को अकल्पनीय भीड़ थी। आइए कुरुवर श्रेष्ठ युवराज, आज यह दूसरा अवसर है कि जबकि नगरजनों के उत्साह में उत्सुकता का ज्वार आया। पांचालों के अमात्य वीर बाहु मुझको रथ से उतारते हुए बोले, और किसका इतना प्रचंड उत्साह से स्वागत हुआ है। मैंने अमात्य महोदय से पूछा। मथुरा से यादव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के आज ही आए हैं उनका। श्री कृष्ण क्यों जी अमात्य, श्री कृष्ण भी स्वयंवर में भाग लेंगे क्या, मैंने तनिक भयपूर्ण संदेह से पूछा। या मैं कह सकता हूँ, लेकिन भाग नहीं लेंगे ऐसी बात भी नहीं। स्वयंवर के लिए और कौन कौन आया है। महाराज भोज, सौबल, सहदेव, शल्य, शिशुपाल, विराट, सुकेत, चित्रायुध, जरासंध, चीकितान, भगदत्त आए हैं। साथ ही भूरिश्रवा, सुषेण, रणधर्मा, सोमदत्त, वृषक, बृहंतबल, बृहंत, मणिमा, दंडधर, मेघसंधि, शंख, सुशर्मा तथा इसके अतिरिक्त सेनाबिंद, सत्यधृति, सूर्यध्वज, रोचमान, सुदक्षिण, रुक्मरथ, शिवि, श्रीकृष्ण पुत्र प्रद्युम्न, सात्यकी, सिंधुराज, जयद्रथ आदि अनेक वीर महाराजा महाराजा आए हैं। हम केवल हस्तिनापुराधिपति की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझको मंडप के एक ओर कि राजभवन में ले गए। स्वयंवर अपान काल के घड़ी बर्बाद होने वाला था। तब तक मैं, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी मामा हम सब भोजन करके विश्राम करने वाले थे। हमारी यात्रा लगभग 100 योजनों की हो चुकी थी। देह पर राज वस्त्र धूल झिसरित हो गए थे, घोड़े थक गए थे। स्वयंवर के संबंध में मैं निश्चिंत था, क्योंकि जो राजागण आए हुए थे उनमें कोई भी निष्णात धनुर्धर नहीं था। वे योद्धा थे, परंतु द्रुपद का कठिन प्रण कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। केवल अकेला कर्ण ही एक बार पुनः सबके नेत्रों को धन्य करने वाला था। और इस प्रकार प्रण में जीती हुई श्यामल द्रौपदी को वह मित्र प्रेम से मेरे चरणों पर अर्पण करने वाला था, क्योंकि आज तक मैंने उसको बड़ी दृढ़ता से यही समझाया था कि जीवन एक अनिवार्य समझौता है। यदि कोई अकल्पित घटना हो जाती है, तभी पांचाली हमारे हाथों से निकल सकती है। मेरे मन के एक कोने में जो संदेह था, वह केवल एक ही व्यक्ति के कारण था, और वह व्यक्ति था श्री कृष्ण। 12. और अंत में वह अकल्पित घटना सचमुच हो ही गई। हृदय में अनेक घटनाओं का अनिवार्य बाण लेकर ही मैं स्वयंवर में हस्तिनापुर को लौटा। अब मुझको बार बार यही लगता है कि जीवन स्वयं भी एक अद्भुत रम्य स्वयंवर है। प्रत्येक व्यक्ति इस स्वयंवर में बड़े उत्साह से भाग लेता है, लेकिन कभी कभी काल इतने कठिन प्रण इस स्वयंवर में उपस्थित कर देता है कि कोई भी उन सबको जीत नहीं पाता। उन सबको तो अपनी दुर्दशा हो जाती है, बस मृत्यु ही शेष रह जाती है। अनेक व्यक्ति धैर्यवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होते हुए भी इन प्राणों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। न मैं, न अश्वत्थामा, न कर्ण, न अन्य कोई। पांचाली के स्वयंवर की केवल स्मृति ही मेरा मन अनेक प्रकार की भावनाओं के विचित्र सम्मिश्रण से तड़पने लगता है। कोई मेरे आगे काल का और भाग्य का वर्णन करता है तो वह मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने जीवन में केवल कर्तृत्व को ही महत्व दिया था, परंतु जब जब कर्तृत्व ने स्टेज पड़ा, तब तब मुझको काल के महत्व की प्रतीति होने लगे। मनुष्य अपने पुरुषार्थ के नगाड़े कितने ही क्यों न पीटे, अपने कर्तृत्व के ध्वज हाथ में लेकर उन्मत्त होकर वह कितना ही क्यों न नाचे, लेकिन अंत में विशाल और अनंत आकाश के सामने वह ठिकना और अपूर्ण ही रहेगा। अपूर्णता ही जीवन का स्थायी भाव है। इस बात का अनुभव मुझको पांचाली के स्वयंवर से बार बार होने लगा। स्वयंवर संपन्न हो गया था, किंतु उसका मधुर सुकुमार हाथ मेरे हाथ में नहीं आया। उसके पाणी ग्रहण के लिए मैंने जो दृढ़ हाथ आगे बढ़ाया था, उस पर कठोर नियति ने सत्य के धधकते हुए अंगारे रख दिए थे। स्वयंवर की घटनाओं की याद आने पर अब भी मेरी मति कुंठित हो जाती है। ऐसा लगता है कि जीवन जैसे रहस्यमय सुरंग हो। कितना अच्छा होता यदि मैं उस स्वयंवर में गया ही न होता। अनेक कट और सह सत्यों का बोझ तो मेरी छाती पर न पड़ता, क्योंकि उस स्वयंवर ने मुझको सबसे भयंकर आघात पांडवों के अस्तित्व के संबंध में दिया था। पांडव जीवित है यह असह्य सत्य एक राक्षस का भयंकर रूप धारण कर मेरी छाती पर था थैया नृत्य कर रहा था। उसके पैरों तले मेरी आकांक्षाएं चूर चूर हो रही थी। उस स्वयंवर को भूलने का मैं प्रयत्न कर रहा था, लेकिन बार बार मेरी आंखों के सामने खड़ा होकर मुझको त्रस्त कर रहा था, जैसे कोई अप्रिय व्यक्ति बार बार सामने आकर हमारे कुशल क्षेम पूछता है। प्राण में रखा गया मत्स्य यंत्र आंखों के सामने आकर बार बार घूम जाता। स्वयंवर के दिन पांचालों के राजनगरी में पहुंचते हमें पहले पंच पकवान खाने को मिले। फिर हमने थोड़ी देर वाम कुछी के लिए महल में पड़े पड़ों पर लोट लगाई। थोड़ी देर बाद ही कर्ण उठ पड़ा। देह पर उत्तरी डालकर वह महल के बाहर जाने लगा। मैं कुछ कुछ निद्रावस्था में था, फिर भी मैंने उसे पूछ ही लिया, कर्ण, स्वयंवर की घड़ी निकट आती जा रही है, इस समय कहाँ जा रहे हो? समय तो सभी के लिए सुविधाजनक होता है, लेकिन जो असमय को भी सुविधाजनक बना लेता है वही सच्चाई होता है। हस्तिनापुर में मैंने उसको जो दर्शन बताया था वही उसने मुझको सुना दी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी लौटना। कारण? कारण क्या? कारण यह कि तुम नगर में जहाँ जहाँ जाओगे वहीं तुमको देखने के लिए स्त्रियों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। नहीं, मुझको तो नगर में जाना ही नहीं, उसने मंद स्मृति के साथ कहा। तो फिर कहाँ? गंगा के तट पर। वह कहीं भी रहे, एक नदी की तट की ओर उसके दूसरे स्वच्छ आकाश की आवश्यकता रहती थी। नहीं, यही राजप्रसाद के एक अन्न भवन में जा रहा हूँ, उसने सिर हिलाते हुए कहा। किसके? दुष्टुम्न के या आमत के? शायद तुम स्वयंवर के संबंध में सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। नहीं राजन, मैं जा रहा हूँ श्री कृष्ण से मिलने। थोड़ी देर पहले ही मैंने आर्य आमात के हाथों उनको संदेश भिजवा दिया। श्री कृष्ण मिलने के लिए तुमको वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है? आमात के द्वारा हम उसी को यहाँ बुलवा लेंगे। मैं तत्क्षण पलंग पर से उठा और निद्राधीन दुशासन की ओर जोर से चिल्लाते हुए मैंने कहा, दुशासन उठ और पांचालों के आमात को बुला ला। कर्ण ने तत्क्षण आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं, उसकी निद्रा भंग मत करो, मैं आधी घड़ी में ही लौट आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि श्री कृष्ण को यहाँ बुलाया जाए, मैं स्वयं ही उनके पास जाऊँगा। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वह अपने लिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहता था। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। मैंने उसकी इच्छा को मोड़ नहीं सकता था, लेकिन न जाने क्यों यह बात कि वह श्री कृष्ण मिलने जा रहा है मुझे उस समय तनिक न भाई। श्री कृष्ण के संबंध में मेरे विचार अधिक अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसका रंग भी अर्जुन की तरह नीला था। उसको देखकर मुझको अर्जुन की याद आ जाती थी। हमने आधी घड़ी तक विश्राम किया। इसी बीच कान्हा श्री कृष्ण से मिलकर आ चुका था। उसकी मुख मुद्रा उल्लसित एवं आनंदित दिखाई दे रही थी। राजप्रसाद के सामने स्थित मंडप में एकत्रित लोगों का उत्साहपूर्ण कोलाहल हमें स्पष्ट सुनाई दे रहा था। मैं, शकुनी मामा, अश्वत्थामा, दुशासन, हम सभी राजवस्त्र पहनकर तैयार थे। कर्ण वस्त्रागार में वस्त्र बदल रहा था। थोड़ी देर बाद वह वस्त्रागार से बाहर आया। उसने नीले रंग का अधरीय पहन रखा था, उस पर एकदम पीले रंग का उत्तरीय था। सच पूछो तो उत्तरीय की अपेक्षा उसकी त्वचा का रंग ही अधिक खिल रहा था। जब वह वस्त्रागार से बाहर आया तब मुझे ठीक ऐसा लगा जैसे गुफा से कोई वनराज आ रहा हो। मानो उसकी मुख मुद्रा से सूर्य किरणों के परावर्तित होकर वातावरण में मिल रही। मुझको देखते ही वह धीरे से मुस्कराया। उसके सुंदर दाएं गाल पर एक मधुर गड्ढा पड़ गया। ऐसा गड्ढा मैंने भूले भटके एकाध बार ही देखा था। उसकी सुवर्णवर्णी गोलाकार मुद्रा मुझको सदैव प्रफुल्लित सूर्यमुखी जैसी लगती थी। उसका पुत्र सुदामन भी उसके पीछे पीछे वस्त्रागार से बाहर निकला। बहुत मना करने पर भी वह हठपूर्वक हमारे साथ आया था। थोड़ी देर बाद ही एक दास महल में आया और उसे झुकाकर मुझसे बोला, महाराज, आर्य अमात ने आप सबको सादर स्मरण किया है। मंडप में सभी नरेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं, कर्ण, शकुनी मामा, अश्वत्थामा, कर्णपुत्र सुदामन और दुशासन, यदि मेरे 10 भाई, हम सब महल से बाहर निकले। जाते जाते मैंने कर्ण से कहा, मेरा समस्त भार अब तुम पर ही है। देखना, यह बहुत ही कठिन भार है। कुछ न कहकर वह केवल हंस पड़ा। उसके स्वर्ण जड़ित दांत क्षण भर के लिए चमक उठे। चलते समय लगने वाले धक्कों से कानों के सुंदर कुंडल एक लय में हिलने लगे। हम लोग स्वयंवर के मंडप में पहुंचे। किसी के कंठ ने उद्घोषण किया, हस्तिनापुराधिपति कौरव श्रेष्ठ धृतराष्ट्र पुत्र युवराज दुर्योधन, द्रुपद पुत्र युवराज दुष्टुम्न ने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। उसने बड़े स्नेह से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और हमको हमारे आसनों की ओर ले जाने लगा। सभी आमंत्रित राजागण और योद्धागण आदर से उठकर खड़े हुए। मेरी छाती अभिमान से उन्नत हो गई। मानव ये सब नरेश उठकर कुरुओं की प्रतिष्ठा को मान्यता दे रहे थे। हम सब लोग आसनस्थ हो गए। तुरंत ही मंडप के एक अन्य सब नरेश भी बैठ गए। मेरे आसन के सामने एक आसन अभिरिक्त था। अन्य सब आसनों पर तो कोई न कोई बैठा हुआ था। मैंने उत्सुक होकर दुष्यधुम्न से पूछा, सामने वह आसन किसका है, अभी भी वो रिक्त क्यों है? उस आसन को देखता हुआ बोला, जब तक वह आसन सुशोभित नहीं होगा तब तक स्वयंवर प्रारंभ ही नहीं होगा, क्योंकि वह आसन भगवान श्री कृष्ण का। मथुरा अधिपति यादव कुल उत्पन्न वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण। मंडप पे एक और उद्घोष गूंज उठा। प्रवेश द्वार से नीलवर्ण श्री कृष्ण प्रवेश कर रहा था। उसके साथ उसके अग्रज बलराम, पुत्र प्रद्युम्न, रुक्मरथ, उद्धव, सातकी इत्यादि लोग थे। मंडप के सभी नरेश ही नहीं बल्कि पुरोहित के साथ राजस्त्रियों के घेरे में सभी जन आदर से खड़े हो गए। मेरे पास बैठे हुए कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी मामा, दुशासन सभी उठकर खड़े हो गए। तो उस काले कृष्ण को इतना मान क्यों दे रहे हैं, यही मेरी समझ में नहीं आया। पैरों के पदत्राण में कुछ अटक गया है, यह बहाना बनाकर उसके बंधन खोलने के निमित्त से मैं आसन से तिल भर भी नहीं सरका, परंतु कटाक्षों से मैं सर्वत्र देख रहा था। श्री कृष्ण हाथ उठाकर सबको बैठने का संकेत कर रहा था, लेकिन कोई भी नहीं बैठ रहा था। अंत में मेरे सामने स्थित आसन पर वह आसीन हो गया। तब भी सब खड़े थे। वह पुनः उठकर खड़ा हुआ और मुस्कुराता हुआ दया हाथ उठाकर धीर गंभीर स्वरों से बोला, आमंत्रित राजाओं, आप लोग बैठिए। दुराधिष्ठुम अब अपनी भगनी युवराज्ञी यज्ञसेना का स्वयंवर प्रारंभ करेंगे। सभी जन कठपुतलियों की तरह बैठ गए। श्री कृष्ण ने मुझ पर भी एक दृष्टि डाली। मैंने अपनी दृष्टि दूसरी ओर मोड़ ली। मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता था। उसके दर्शन मात्र से ही मुझको अर्जुन की याद आती थी और तब छाती में एक अजानी पीड़ा उभर आती थी। ऐसा आभास होने लगा था मानो भीम की गदा मेरे चारों ओर फिर रही। मैंने समस्त मंडप पर दृश्य घुमाई। वहां आर्यावर्त के सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित थे। तो द्रौपदी की सुगंध ने सभी पर मोहरी डाल रखी है। मगधाधिपति जरासंध, मद्राधिपति शल्य, सिंधुराज, जयद्रथ, शिशुपाल, एक से एक अधिक सामर्थ्यशाली वीरों का सम्मेलन था वो। लेकिन न जाने क्यों उनमें से एक भी मुझको कर्ण जैसा तेजस्वी आकर्षक नहीं लग रहा था। यह बात उसको बताने के विचार से मैं उसके कान के पास मुंह ले गया, परंतु वह असाधारण था। वह एकटक केवल श्री कृष्ण की ओर देख रहा था। मैंने उसको सावधान करने के लिए सदैव की भांति कोहनी मारी। वह चौंक कर मेरी ओर देखने लगा। मैंने उसको उसके सौंदर्य के बारे में बताने के लिए होठ खोले, लेकिन इतने में ही पांचालों का युवराज दुष्टुम्न अपनी भगनी यज्ञसेना को लेकर मंडप में आया। चारों ओर उत्सुकताजनक नीरव शांति छा गई। प्रत्येक व्यक्ति अधोमुखी और धीर गंभीर उस पद निक्षेप वाली पांचाली की ओर ध्यान से देखने लगा। उसके हाथों में उससे पैरों तक लटकने वाली डबल कमलों की वरमाला थी। उसने प्रत्येक पद निक्षेप के साथ ही जैसे वहां एकत्रित सभी वीरों के हृदय कमलों को प्रफुल्लित करते हुए चल रही थी। अंत में वह और दृष्टद्युम्न दोनों मंडप के मध्य भाग में बनाए हुए पत्थर के एक चबूतरे पर आकर खड़े हो गए। विविध पुष्प मालाओं से सुसज्जित अनेक प्रकार के पुष्पों की गंध से मत्त व विशाल मंडप सलज्ज पांचाली के वहां पहुंचते ही सच्चे अर्थ में स्वयंवर मंडप दिखाई देने लगा। सांवले रंग की द्रौपदी शरद ऋतु की भावना आकर्षक संध्या जैसी दिखाई पड़ रही थी। अपना दाया हाथ मस्तक तक ऊंचा उठाकर युवराज दृष्टद्युम्न कहने लगा, आमंत्रित राजागण, मेरी भगनी युवराज्ञ यज्ञ सेना के स्वयंवर के लिए आप पधारे हैं, इसीलिए पांचालों की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इस स्वयंवर में जो प्रण रखा गया है उस प्रण को जो वीर पुरुष पूर्ण करेगा उसे मेरी आह्वान यज्ञ सेना पति के रूप में वरण करेगी तथा अपने हाथों के वरमाला उसके कंठ में डालेगी। उस महायोद्धा की पत्नी बनकर वह जीवन भर उसकी सेवा करेगी। प्रण यह है कि सबके सम्मुख मंडप की छत में एक मत्स्य यंत्र टंगा हुआ है, कुशल अभियंता उसको अभी चालू करेंगे। इस चक्कर लगाने वाले गतिमान मत्स्य यंत्र की लकड़ी ये मछली की दाई आंख को शिव धनुष की प्रत्यंचा तान कर तथा उस पर एक सूची बाण रख चढ़ाकर और यंत्र के नीचे बने सरोवर में उस मछली के प्रतिबिंब की ओर देखकर जो वीर अचूक भेदेगा वह आज से हम पांचालों का आपतेष्ट होगा। इसीलिए धनुर्धर चाहे जितने बाण फेंके हमें आपत्ति नहीं। उसने प्रस्ताव समाप्त कर आचार्य आमात की ओर एक दृष्टि डाली। आर्य आमात ने मंडप की छत पर चढ़े कारीगर को जैसे संकेत किया उसने मत्स्य यंत्र घुमाना आरंभ कर दिया। उस यंत्र के साथ ही आर्यावर्त के श्रेष्ठ वीरों का भाग्य भी अक्षरशः चक्कर काटने लगा। पांच विशाल का मल्ल दौड़ते हुए आया और पांचालों के शस्त्रागार से विख्यात शिवधनुष को बड़े कष्ट से उठाकर ले आया। उस धनुष को उन्होंने सरोवर के पास रख दिया और मुक्ति की सांस लेते हुए मस्तक का पसीना पोंछा। सर्वत्र शांति छा गई। मत्स्य यंत्र की केवल घर घर आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। सरोवर के पानी में उसका प्रतिबिंब घूमने लगा। उस भारी भरकम शिवधनुष को देखकर उसको स्पर्श करने के लिए कोई भी साहस नहीं कर रहा था। सभी लोग एक दूसरे की टुकुर टुकुर देखने लगे। अंत में विशाल वक्षस्थल वाला और नाम के अनुरूप दृढ़ शरीर वाला राजा दृढ़ धनवा उठा। समस्त मंडप पर अभिमान भरी दृष्टि डालते हुए उसने उत्तरी संभाल कर शिवधनुष को हाथ लगाया। सभी प्रेक्षकों ने प्रत्यक्ष देखा दृढ़ धनवा की आंखें घूम गई थी, लेकिन वह उस प्रचंड शिवधनुष को टस से मस नहीं कर सका। झुंझलाकर उसने अपना सिर झुका लिया और क्षण भर बाद ही वहां से पराजित होकर लौट आया। मंडप में क्षण भर भी न रुक कर वह अभिमानी राजा सीधे बाहर चला गया। उसके बाद मेघसंधि मणिमान दंडधर सुषेण रोचमान बृहद बल सत्यधृत व भोज जैसे अनेक राजा क्रम क्रम से आए, लेकिन उनमें से कोई भी शिवधनुष को ऊपर न उठा सका। अंत में चेतिराज शिशुपाल उठा। उसने दांतों से होड़ दबाते हुए जैसे तैसे उस धनुष को उठाया, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेद के लिए अपने को संभाल न पाया। बड़ी कठिनाई से वह एक ही बाण छोड़ सका, लेकिन वह मछली के सिर में नहीं लगा। सबके मन की आशाएं ध्वस्त हो गई। उसके बाद पांडवों का मामा राजा राजमाता कही जाने वाली माद्री का सगा भाई मध्य देश का राजा शल्य आगे आया, लेकिन वह जैसे ही तैसे दो बाण फेंक सका। उसके बाद सिंधु देश का राजा जयद्रथ उठा। बड़े प्रयत्न से शिवधनुष उठाकर उसने तीन बाण फेंके, लेकिन एक भी लक्ष्य को भेद नहीं पाया। चारों ओर सुखता भय सहानुभूति आदि विविध भावनाओं से भरी हुई शांति छा गई। स्वयंवर को प्रारंभ हुए घटका भी चुकी थी, लेकिन फिर भी मत्स्य यंत्र सबको अंगूठा दिखाता हुआ उन्मत्त भाव से उसी तरह घर घर चक्कर लगा रहा था। मैंने एक बार यौ श्री कृष्ण की ओर देखा। आसन की दाई ओर उसने अपनी खूनी टेक रखी थी। दाई हथेली पर दाया गाल रख कर थोड़ा सा दाई ओर झुका शांत बैठा हुआ था। जब मैंने कर्ण की ओर देखा तो पता चला कि वह एकटक श्री कृष्ण के अंगूठे की ओर देख रहा था। अब मेरी इच्छा होने लगी कर्ण को आगे बढ़ने का संकेत कर दिया जाए, लेकिन कहीं उसका भी लक्ष्य भेद चूक गया तो यह संदेह मन ही मन से उठाने लगा। उसके अंत में निर्णायक समय आने पर मैं उसको संकेत करने वाला था। एक के बाद एक राजा आ रहे थे, अपने पुरुषार्थ की कसौटी पर कस रहे थे, लेकिन अपयश लेकर लौट रहे थे। कुछ निपुण ने तो दो दो बार प्रयत्न किए, लेकिन मत्स्य यंत्र घर घर करता हुआ जो कहते घूम रहा था। मंडप में शिव धनुष के गुणगान से भरी कानाफूसी आरंभ हो गई। आर्यावर्त के सभी राजा उस कठिन प्रण के सम्मुख निष्प्रभ हो गए थे। कुछ राजा मेरी ओर देख रहे थे, कुछ कृष्ण की ओर तथा लगभग सभी व्यक्ति आशा से कर्ण की ओर देख रहे थे। इतने में मगधों के विशाल साम्राज्य का स्वामी द्वंद्व युद्ध में प्रवीण सशक्त शरीर वाला जरासंध उठा। उसका कसा हुआ संपूर्ण शरीर पुष्ट हाथी जैसा विशाल था। अभिमान से छाती फुलाता हुआ वह शिव धनुष के पास आया। पूरी सामर्थ्य से उसने धनुष उठाया, एक के बाद एक चार बाण फेंके, लेकिन मत्स्यंत्र के चक्र के पार्श्व से वे पार निकल गए और छत को भेद कर अदृश्य हो गए। अपने बाणों में से एक बाण तो मछली की आंख में लग ही गया होगा, इस आशा से उसने छत में टंगे मत्स्यंत्र की ओर क्षण भर देखा। परंतु इतने में उसका संतुलन बिगड़ गया और अपने को संभालने के प्रयत्न में वह सरोवर के पाषाण निर्मित ऊंचे किनारे से धराम नीचे गिर पड़ा। वह भारी शिवधनुष उसकी उन्नत छाती पर आ गिरा। उसके पराभव का क्रूर उपहास करने वाली हंसी की लहर मंडप में सर्वत्र फैल गई। मैंने श्री कृष्ण की ओर देखा, लेकिन वह भी व्यंग के भाव से मन ही मन हंस रहा था। परंतु दूसरे ही क्षण दृश्य बदल गया। उस प्रचंड धनुष के असह्य भार के नीचे जरासंध प्राणांतक पीड़ा से तड़पने लगा। हाथ पैर पटक कर अपनी मुक्ति के लिए दयनीय प्रयत्न करने लगा। उसके मुख से रक्त का वमन ऊपर ही छूटा। शिव धनुष रक्त रंजित हो गया। एक मान्य छत्री की यह दयनीय दशा मुझसे देखी नहीं गई। मैंने निश्चय किया कि स्पर्धा में भाग नहीं लेना है, लेकिन क्षण भर में ही मैं उसको भूल गया। श्री कृष्ण के तटस्थ भाव से दुखी होकर उस पर एक जलते दृश्य जलता हुआ मैं तत्क्षण आसन से उठ खड़ा हुआ। कर्ण अभी पागलों की तरह उसके काले कृष्ण के पैरों की ओर देख रहा था। जब से वह श्री कृष्ण मिलकर आया है, तब से वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था, यही मेरी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण ने उसका तेजोभंग कर दिया था क्या? कर्ण की सहायता की प्रतीक्षा किए बिना मैं उठ खड़ा हुआ। मैं सरोवर के पास आया। जरासंध की दृष्टि आकाश की ओर लगी हुई थी। वह भीम का राजा मुझसे जैसे प्राणों की भिक्षा मांग रहा था। मगधों के समर्थ राज्य का वह पराक्रमी राजा इस आशा से देख रहा था कि मृत्यु का रूप धारण कर छाती पर बैठे हुए शिव धनुष को कोई दूर कर दे। एक विख्यात द्वंद्व योद्धा इतने कष्ट से मृत्यु से द्वंद्व कर रहा था। मैंने कृष्ण के पास बैठे हुए अपने गुरु बलराम की ओर एक बार श्रद्धा से देखा। उनके विशाल नेत्र मुझको आशीर्वाद दे रहे थे। उस विकट अवसर पर भी श्री कृष्ण और बलराम जी की तुलना करने का आश्चर्यजनक विचार मेरे मन में तैर गया। बलराम जी के प्रति मेरे मन में असीम आदर था, परंतु उतने ही बल्कि उससे कुछ अधिक ही घृणा श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में समा गई। दूसरे ही क्षण में आगे बढ़ा, घायल तड़पते हुए तथा श्रांत जरासंध के हाथ पैरों की गति शांत हो गई थी। उसके शरीर का रोम रोम मानो आंख बनकर बात कर रहा था। मृत्यु के द्वार पर जीव कितना विवश होता है। वह अपनी प्रतिष्ठा, आत्माभिमान सब कुछ भूल जाता है। वह याचना करता है केवल जीवित रहने की, जीवन की। देश विदेश से अनेक राजाओं को नरयज्ञ के लिए अपनी राजधानी गिरिवृक्ष के कारागार में बंदी बनाने वाला जरासंध को शिवधनुष में बंदी बना रखा था। नीचे झुककर मैंने एक हाथ से वह शिवधनुष उठा लिया। समस्त मंडप में तालियों के प्रचंड गड़गड़ाहट हुई। बहेलिया द्वारा लगाए गए जाल में फंसी हुई पूंछ के बंधन मुक्त होते ही कोई बनराज जैसे गर्जना करते हुए ऊंची छलांग लगाता है, वैसे ही छाती पर से धनुष के हटते ही जरासंध चपलता से उठा और हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया। उसने मुझको अलिंगन पास में कस लिया। सब लोगों ने यही समझा कि द्रौपदी के लिए स्वयंवर भाग लेने के लिए ही मैंने वह धनुष उठाया था। किसी ने मेरे नाम का जय घोष किया। वहां से लौटने अब मेरे लिए संभव नहीं था। उस धनुष को मैंने सहज उठा लिया। ऐसा बहुत से लोगों का आश्चर्य हुआ, परंतु मेरे गुरु बलराम जी के अतिरिक्त किसी को भी यह नहीं विदित था कि गधा की शाला में भीम से निरंतर 6-6 घंटों तक गधा खेला करता था। भुजाओं का वही अभ्यास इस समय मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा था। मेरी भुजाएं हाथी के पैरों की तरह पुष्ट हो गई थी। हाथ में धनुष डालते हुए मैंने सारे मंडप पर एक बार अपनी दृष्टि घुमाई और फिर सरोवर के किनारे गया। किनारे पर खड़े सहज ही एक बार द्रौपदी पर दृष्टि डाली। वह सांस रोककर मेरी ओर देख रही थी। मेरे मन में कुरुकुल के विमान का चंचल अंकुर गर्व से सिर उठाने लगा। उस सुगंध के पात्र को सबके सामने कांख में दबाकर आज हस्तिनापुर जाना है, यह निश्चय कर मैंने कुंड के पानी पर स्थिरतापूर्वक दृष्टि डाली। मत्स्य यंत्र का प्रतिबिंब जल में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मुझसे पहले प्रतिद्वंदियों ने जो बाण फेंके थे उससे छत में कुछ छिद्र हो गए थे। उन छिद्रों में से घुसकर कुछ निकम्मी सूर्य किरणें भी पानी में तैर रही थी। उनसे वह प्रतिबिंब दमक रहा था, लेकिन उसने चक्कर काटते हुए मछली की आंख दिखाई नहीं पड़ रही थी। फिर भी मैंने प्रत्यंचा खींचकर निशाना साधा और निरंतर एक के बाद एक 5 बाण छोड़े, पर प्रत्येक बाण के साथ छत में केवल एक छिद्र ही अधिक हो गया। सूर्य किरणों के 5 और प्रतिबिंब कुंड के पानी में झांकने लगे और 5 किरण बिंबों को देखते ही मुझको पांडवों की याद आ गई। अब हर 5 का अंक मेरे मन का भेदन कर रहा था। मेरा एक भी बाण मत्स्य को नहीं लगा था। 5 चरणों का वह क्षुद्र मत्स्य यंत्र गुरुओं के सिंहासन को चिढ़ाता हुआ पर्वत अभिमान से घूम रहा था। उस भारी यंत्र धनुष को जलते जलते मेरी भुजा में पीड़ा होने लगी। फिर नौकर मैं किनारे से नीचे उतरा। मुझको बड़ी तीव्र अनुभूति हुई कि इस द्रुपद राजा ने इस प्रण के बजाय गधा का कोई भी कठिन प्रण यदि आज रखा होता तो मैं उसका क्या बिगाड़ जाता। उसे सचमुच ही अपनी कन्या का स्वयंवर करना था या इन पराक्रमी वीरों का क्रूर उपहास। उसका शिव धनुष देकर यह प्रण पूर्ण करने के लिए अब कैलाश पर्वत पर से स्वयं शिव को भी दौड़कर आना चाहिए था। मेरी पराजय पर द्रौपदी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैंने लज्जित मन से सरोवर की सीढ़ियों से उतरा। हाथ का शिवधनुष क्षण प्रति क्षण मुझको अत्यधिक भारी लगने लगा। सबसे अधिक समय तक मैंने उसको अपने हाथ में झेला था। मंडप के लोगों पर क्या प्रतिक्रिया हो रही थी यह जानने के लिए मैंने चारों ओर दृष्टि डाली। यादवों का चुपचाप बैठा हुआ राजा श्रीकृष्ण मेरी ओर देखकर भेद भरी हंसी हंस रहा था। अन्य लोगों ने सिर झुका लिए थे। कर्ण पागलों की तरह अब भी उस काले श्रीकृष्ण के पैरों की ओर देख रहा था। हंसते हुए श्रीकृष्ण पर मैंने जलती हुई दृष्टि डाली और आंखों ही आंखों में उससे कहा, अरे केवल हंस क्या रहा है, साहस हो तो उठ और यह धनुष उठाकर रण पूर्ण करके दिखा। फिर मैंने वह धनुष उसी की ओर फेंक दिया, लेकिन मेरी भुजा की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण वह अधिक आगे तक तो न जाकर पैरों के नीचे चिकने पत्थर पर से कुछ भांति फिसलता हुआ एक गोल चक्कर लगाता घूमकर मेरे ही सीधे पैर के पंजों पर आ गिरा। वेदना की एक तीव्र लहर पैर से मस्तक तक दौड़ गई। प्राण में पराजित होने से मन और धनुष के भार से शरीर दोनों ही चित्कार करने लगे। सहायता की अपेक्षा से मैंने सामने बैठे हुए राजा जरासंध की ओर देखा। उसने नकार सूचक सिर झुका लिया। उस विकट अवस्था में भी मुझको उस पर तरस आया। धनुष के नीचे दबे हुए अपने पैर की पीड़ा से मुझको उतना दुख नहीं हुआ जितना कि जरासंध की उदासीनता देखकर। पैर धनुष के नीचे दबकर भले ही टूट जाए, लेकिन अब सहायता के लिए किसी की ओर नहीं देखना है, यह निश्चय कर मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। थोड़ी देर पहले जरासंध को मुक्त करने वाला दुर्योधन अब स्वयं शिव धनुष के नीचे आ गया था। यह देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे थे, लेकिन आगे कोई नहीं आ रहा था। मेरा मन ऐसे तड़प रहा था जैसे कि चारों ओर लाल चीटियों द्वारा डसा हुआ जाता कोई घायल सर्प तड़पता हो। परंतु अचानक मंडप में कानाफूसी की आवाज़ कुछ तीव्र हो गई। खंड खंड शब्द एक के बाद एक मेरे कान से टकराने लगे। कर्ण, कवच, कुंडल, वत्सवीर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, साक्षात धनुर्धर। सिर उठाकर मैंने कर्ण के आसन को देखा। वह आसन से उठकर खड़ा हो गया था। उसके कानों के कुंडल तप्त लाल हो गए थे, लेकिन खड़ा होकर भी वह सामने श्रीकृष्ण के पैर को सीधे अंगूठे की ओर अब भी देख रहा था। मेरी इच्छा हुई कि चिल्लाकर कह दूं, कर्ण सदा गरुण की तरह आकाश में उड़ान भरने वाली तुम्हारी आंखें आज इस काले श्रीकृष्ण के पैरों पर ही क्यों लगी हुई हैं। लेकिन इतने में ही श्रीकृष्ण ने दाहिने पैर का अंगूठा धीरे से ऊपर किया। एक मोहक मुस्कान डालता हुआ कर्ण आसन के पास से झट मुड़ा और जल्दी जल्दी पैर रखता हुआ मेरी ओर आने लगा। उसकी लंबी देह यष्टि इतनी प्रभावशाली लग रही थी कि मानो खद्र का विशाल वृक्ष ही चल रहा हो। उसके प्रत्येक पदक्षेप के साथ उसके कान के कुंडल लय में झूल रहे थे। उसकी आत्मविश्वास से पूर्ण तथा सुंदर चाल पर सभी प्रेक्षक इतने मुग्ध होते हो गए थे कि धनुष को हाथ लगाने से पहले ही सबने प्रचंड तालियों से उसका स्वागत किया। मुझको अब यह भी भान रहा कि मेरा पैर धनुष के नीचे दबा हुआ है। हस्तिनापुर के अखाड़े में मुझे मिला हुआ श्रेष्ठ हीरा दसों दिशाओं में तेज की दीप्तिमान किरणें फेंकता हुआ आ रहा था। छी, मैं भी कितना स्वार्थी था। इस प्रकार कर्ण का उपयोग कर मैं पांचाली को अपना अर्धांगिनी बनाने वाला था। कितनी बड़ी और रसिकता होती है यह। पांचाली जैसी सुगंधमयी तो कर्ण जैसे स्वर्ण पुष्प को भी शोभा दे सकती है। कर्ण और पांचाली की जोड़ी तो ऐसी लगती है कि साक्षात उमा शंकर भी लज्जित हो जाते। मैंने अपना विचार बदल दिया। अब क्षण भर बाद ही कर्ण मतभेद करेगा। उसके मतभेद करने पर द्रौपदी को अंगदेश के मराने बनाकर जयघोष करना है और यह घोषणा कर दे रही है कि चंपा नगरी अंगदेश की राजधानी। इतनी घोषणा करके चुप नहीं हो जाना है, बल्कि कर्ण कुरुओं का सेनापति यह कहकर इसको उचित गौरव भी प्रदान करना है। हस्तिनापुर को लौटने पर यह बात महाराज को अच्छी तरह समझाकर तदनुसार सेनापति पद की विधि भी पूरी करनी है। हस्तिनापुर में राजकीय हाथी पर उन दोनों का जुलूस निकालना है। मैंने मन ही मन निश्चय कर डाला। क्षण भर में ही वह मेरे पास आया। उत्तरी का लटकता हुआ छोर कमर के पास अधली में खोसा। केवल एक बार ही उसने मेरी ओर देखा बिना कुछ बोले। उसकी नीली विशाल तेजस्वी आंखें मुझसे कह रही थी, राजन घबरा गए क्या? तुम्हारा छुटकारा पाने के लिए समर्थ कर्ण के होते हुए तुमने आशा से जरासंध की ओर क्यों देखा? बड़ी सरलता से उसने एक ही हाथ से वह भारी शिव धनुष ऊपर उठा लिया और कोई कुछ समझ पाए इससे पहले वह धनुष उसने क्षण भर में आकाश में फेंक दिया और फिर एक ही हाथ पर उसको अचूक झेल लिया। वैसे ही जैसे कोई छोटा बालक किसी खिलौने को ऊपर उछाल कर झेल देता है। मेरा पैर और मन दोनों ही मुक्त हो गए। मंडप अविरत तालियों से गूंज उठा। मुझको ऐसा लगा जैसे कर्ण का अर्घदान स्वीकार करने वाली गंगा की जल लहरें भी सम्मुक्ति रख रही हूँ। विद्युत गति से वह सरोवर के किनारे गया। हमारा केवल तरकस में सर से उसने एक बाण खींच लिया। यह वही सूची बाण था जिससे वह सदैव सूक्ष्म लज का अचूक भेद करता था। प्रत्यंचा खींच कर सूची बाण चढ़ाकर उसने पानी में झांक कर देखा। घर घर घूमने वाले मत्स्य यंत्र की मछली की आंख पानी में कहाँ प्रतिबिंबित हो रही है यह ढूंढने के लिए उसने आंखें घूमने लगी। उसका भव्य विरासत सभी प्रेक्षकों को मुग्ध कर रहा था। पानी में झांकने वाले उसके पुष्ट गर्दन पर मोहक वलियां पड़ गई थी। हरण पर छलांग लगाने से पहले सिंह जैसा पैतरा लेता ठीक वैसा ही अचूक पैतरा उसने ले रखा था। सभी लोगों की दृष्टि उसकी सूची बाण के अग्रभाग पर लगी हुई थी। द्रुपद कन्या पांचाली के जीवन उस बाण की नोक पर से यात्रा करता हुआ कर्ण के चरणों पर गिरने वाला था। सबने कौतूहल से उत्सुकता से और कर्ण के प्रति निश्चल आदर से सांस रोक ली थी। वही एकमात्र दिव्य क्षण था। सभी पांचाली का और कुरुओं का भविष्य उस मत्स्य यंत्र की मछली के साथ उसी समय निश्चित होना था। पांचाली को प्राप्त कर कर्ण का जीवन प्रकाशवान होना था। छी, पांचाली के जीवन कर्ण के प्रकाशमय सहवास में प्रफुल्लित होने वाला था। वही एकमात्र क्षण सबके भविष्य का नियामक क्षण बनने वाला था। मेरे कुरुओं के आर्यावर्त की और सूर्य शिष्य कर्ण के। मत्स्य यंत्र की घर घर फिरने वाली मछली उसकी आंखों का प्रतिबिंब और सूची बाण की नोक, इनकी संगति उसने बैठाई और लक्ष्य भेद के लिए प्रत्यंचा को कानों के कुंडल पर तक खींचा। उसके साथ ही उसकी उत्सुकता भी खींच गई। बाण छूटने ही वाला था कि इतने में मंडप की उत्साहपूर्वक शांति को विदीर्ण करने वाला एक सशक्त स्वर पत्थर के चबूतरे पर से उभर कर सबके कानों में लिप्त बाण की तरह घुस गया। ठहरिए, कौन बोल रहा है? पहले तो यही किसी के समझ में नहीं आया। सभी लोग पत्थर के चबूतरे की ओर देखने लगे। शुभ्र कमलों की वरमाला को छिड़ी, सबके हृदय धक-धक करने लगे। स्वयं देव भी बोल रही थी। हाथों में लगी कमलों की वरमालाओं से उठाकर कंठ की सुकोमल नसों को फुलाकर वह बोली, ठहरिए, आप मत्स्यभेद नहीं कर सकते। आश्चर्य में काना फंसे मंडप में घेरने लगे। क्यों नहीं कर सकता? तत्क्षण अपने पुष्ट ग्रीवा ऊपर उठाकर अंगराज कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, आप क्षत्रिय नहीं हैं? किसी सारथी की पत्नी या पुत्रवधू बनना मैं स्वीकार नहीं करूंगी। मैं क्षत्रिय कन्या और शूद्र सारथी कन्या नहीं। जिस भुजा से कर्ण ने धनुष थाम रखा था वह भुजा संताप से थर थर कांपने लगी। तने हुए प्रत्यंचा प्रकंपित होने लगी। उसके हाथ में लगे शिवधनुष से मत्स्य के नेत्र भेद के लिए लगाया हुआ बाण टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ किसी तरह छूट गया। वह सीधा श्रीकृष्ण के आसन की दिशा में दौड़ा और नीचे उतर कर सप से उसके दाहिने पैर के अंगूठे में घुस गया। अक्रूर बलराम उद्धव आदि सभी उसकी ओर दौड़े, परंतु बिना कुछ कहे हाथ के संकेत से श्री कृष्ण ने सबको अपने अपने आसन ग्रहण करने को कहा। अपना पैर तिल भर पिना हिलाते हुए झुककर उसने वह बाण सहज अंगूठे से खींच निकाला, फिर रक्त को पीताम्बर से हौले से पोंछ दिया एकदम निर्विकार भाव से। उस रक्त को देखकर मुझको बड़ा संतोष हुआ। छुद्र सूतपुत्र धीरे से बुदबुदाते हुए हृदय विदीर्ण करने वाली विषमता से अपना मुख मोड़कर कर्ण ने भयंकर अट्टहास किया। कैसा था वह हास? वह केवल हास्य नहीं था, आक्रोश स्त्रियों का स्वभाव धर्म है। कर्ण वैसा आक्रोश नहीं कर सकता था, इसीलिए वह हंसा था। परंतु उसका हास्य आक्रोश से भी अधिक हृदय विदारक था। उसके तेजस्वी कुंडल क्षण में निस्तेज होकर तथा दूसरे ही क्षण रक्तवर्ण प्रकाश फैलाकर उसके स्वाभिमानी मन की अंतरंग भावनाओं को स्पष्ट प्रकट करने लगे। बाणों ने छत में जो छेद कर दिए थे उनसे एकटक आकाश पटल को जलाने वाले तपते सूर्य की पागलों की तरह देखता हुआ कुछ देर तक वह तालाब के पाषाण निर्मित तट पर पाषाण मूर्ति की तरह ज्यों का त्यों खड़ा रहा। दूसरे ही क्षण हाथ में लगे कंपित शिवधनुष को क्रोध से नीचे कालीन पर फेंक दिया। फिर जैसे वायु से भड़कता हुआ दावानल वन में लपलप फैल जाता है वैसे जल्दी जल्दी चलकर वह अपने आसन की ओर आया और सिर झुकाकर बैठ गया। उसके चलते समय जिस जिस स्थान पर उसके पैर पड़े थे उस स्थान पर कालीन का वस्त्र जलकर काला हो गया था। पौर्णमासी को जैसे क्षुब्ध समुद्र हो जाता है वैसे ही भावनाओं का प्रचंड झंझावात कर्ण के हृदय को किस प्रकार विक्षुब्ध कर रहा होगा इसका ठीक ठीक अनुमान मैं उसके सहचर में रहकर भी नहीं लगा पाया। उसके पार्श्व में आशा पर बैठा होने के कारण उसके नासिका से बाहर निकलने वाले उष्ण श्वासों को मेरा शरीर अच्छी तरह अनुभव कर रहा था। सभी लोग चुप थे। उस अघटित घटना से सभी को विस्मय का प्रचंड आघात लगा था। वधु के रूप में सामने खड़ी हुई द्रौपदी स्वयं सभी नियम नीति ताक पर रखकर तथा झुका हुआ सिर ऊंचा उठाकर कोई भयंकर बात कही या किसी ने सोचा भी नहीं था। द्रौपदी बोलने वाली थी और उससे क्या कहा गया था वह कर्ण था, इसीलिए इन दोनों के बीच बोलने का साहस किसी को नहीं हो पा रहा था। चारों ओर शमशान की शांति छाए हुए थे। द्रौपदी ने अपना सिर झुका लिया। स्वयं पर प्रारंभ हुए दो घटनाएं बीत चुकी थी। संध्या समय होने के कारण आकाश का सूर्य अब ढलता जा रहा था। उस भव्य मंडप में मत्स्य यंत्र की घर घर ध्वनि के अतिरिक्त और कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। अब इस मत्स्य यंत्र को इसी तरह घर घर फेरना था। उसके विरुद्ध घर घर में काल भविष्य में कौन सा भयानक संगीत रचने वाला था यह या तो मत्स्य यंत्र को याद था या तो फिर काल को। इसने जीवन भर मेरा साथ देने की प्रतिज्ञा की थी उसने उस मित्र अंगराज की ओर मैंने सहानुभूति से देखा। जीवन की प्रतियोगिता में वह आज सचमुच ही पराजित हो गया था। उसके देह के वस्त्र श्वेत से भीग गए थे। अपमान के तीव्र और असह्य प्रतीत से उसका शरीर कदाचित यज्ञ कुंड की तरह दहक रहा था। लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, कहता भी क्या। मेरी इच्छा होती ही थी कि उठूं और चिल्लाकर सबसे कह दूं कि कर्ण हीन नहीं है, क्षुद्र नहीं है। उसकी इस प्रकार अवमानना मत करो। वह अंगदेश का अभिषिक्त राजा है, स्वतंत्र है। उसके कानों में प्रकाशवान कुंडल है, देह पर अभेद्य कवच है, वह श्रेष्ठ। मैंने उठने का प्रयत्न कर ही रहा था कि इतने में सामान्य दर्शकों के आसन से उठा हुआ एक दाढ़ी जटाधारी ब्राह्मण सबको दूर हटाता हुआ आगे आता हुआ मुझको दिखाई दिया। मतभेद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। देखकर द्रुपद राज भी कठोर शब्दों में अपनी उद्विग्नता प्रकट करने लगे। उनके शब्द जलते अंगारे जैसे थे। मेरी कन्या का पाण ग्रहण करने की पात्रता आज आर्यावर्त की एक भी क्षत्रिय राजा में नहीं, क्या मैं यही समझ लूं? एक तुच्छ लकड़ी की मछली ने आज निखिल आर्यावर्त को जीत लिया है। यह समझकर यज्ञदेव से मिले हुए अपने सुगंधित कन्या को मैं फिर यज्ञदेव के धधकते हुए कुंड में विवश होकर धकेल दूं क्या? इस राष्ट्र का छात्र तेज क्या नष्ट प्राय हो गया है? नहीं, वह दाढ़ी जटाधारी ब्राह्मण युवक मध्यभाग में आता हुआ मान से बोला। उसने अपने देह पर भगवा अंगोछा डाल रखा था। सारे शरीर पर उसने भस्म पोत रखी थी, इसलिए उसका वर्ण कैसा था यह शायद कोई नहीं बता पाता, परंतु उसकी तीर जैसी सीधी तेज चाल मुझको चिर परिचित से लगी। वह चाल अर्जुन की चाल से बहुत मिलती जुलती थी। कहीं वह अर्जुन ही तो नहीं था? मेरा शंका कुलमन क्षण भर के लिए कांप उठा, लेकिन यह संभव बात थी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अर्जुन कभी का मृत्युग्रस्त हो चुका था, उसका पिशाच भी स्वयं मंडप में नहीं आ सकता था। यदि आ भी जाता तो शिव धनुष को हाथ लगाने का साहस वह कभी नहीं कर पाता। मैंने यह सुन रखा कि पिशाच शिव से डरते हैं। उस ब्राह्मण कुमार ने शिव धनुष कर्ण की तरह हाथ में उठा लिया। इस घटना से क्षण भर पहले कर्ण का, उस तेजस्वी वीर का जो अपमान हुआ था वह अब किसी को भी ध्यान में नहीं रहा। सबने पुनः तालियों की वर्षा कर उस नए प्रतिद्वंदी का प्रोत्साहन किया। उस ब्राह्मण कुमार ने मुख मोड़ कर श्री कृष्ण को दृष्टि डाली, उसको उन सभी पर आक्रोश आया। उसने जब बैठिए कहा था तभी सब राजा आसनों पर बैठे थे। कर्ण तो उसके पैरों को देखता हुआ बहुत देर तक चुप बैठा रहा, और अब ब्राह्मण कुमार फिर उस ओर देख रहा था। क्यों, आखिर ये सब कृष्ण को क्या समझते हैं? देवराज इंद्र या सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव? मैंने अपना आसन उद्वेगवश एकदम विपरीत दिशा की ओर मोड़ लिया। उस समय मेरी इच्छा हुई कि श्री कृष्ण और ब्राह्मण कुमार और उस मंडप में मूर्खों की तरह तालियां पीटने वाले प्रेक्षक, इनमें से कोई भी मेरी आंखों के सम्मुख न हो। आसन फिराते ही मेरे पीछे बैठा उस शिशुपाल मेरे सम्मुख आ गया। वह आश्चर्य से मेरी ओर देख रहा था कि इतने प्रचंड कोलाहल मच उठा। वह देखो, उस ब्राह्मण कुमार ने मतभेद कर दिया। विगत दो घड़ियों से घटनाओं के उलझे धागे बुनने वाला वह मत्स्य यंत्र अब शांत हो गया था। धन्य है वह ब्राह्मण कुमार, कौन है वह, कहाँ है? मैंने तत्क्षण मुड़कर देखा, सरोवर के किनारे भगवा वस्त्र पहने हुए वह तरुणी छाती फैलाए हुए खड़ा था। उसने मछली की आँख अचूक भेद दी थी। वह कौन था, अब चुप क्यों था? मैंने मन रूपी घोड़ों के प्रश्नों का कशाघात करने लगा। पाषाण के चबूतरे से उतरती हुई साक्षात आकाश कन्या प्रतीत होने वाले द्रौपदी से झुकाए सलज भाव से उस ब्राह्मण कुमार के पास आए। क्षण भर के लिए उसकी ओर देखकर उसके हाथों के धवल कमल की वरमालाएं एकदम उस ब्राह्मण कुमार के गले में डाल दी। ठीक उसी समय सूर्य अस्तंगत हुआ। संध्या की भयानक धोबिल छाया चारों ओर फैल गई। स्वयंवर हो चुका था, सब लौटने के लिए उठ रहे थे, परंतु मेरे पीछे शिशुपाल दोनों हाथ उठाकर चिल्लाया, इस स्वयंवर को हम मान्यता नहीं देते। सभी क्षत्रियों की उपस्थिति में संध्या करने वाला एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय कन्या का वरण कर ले जाए, यह हम सभी का घोर अपमान है। मैं या कदापि सहन नहीं करूंगा, भले ही प्राण चले जाए, पकड़ो इस दाढ़ी वाले को। प्रण से पराजित सभी राजाओं ने अपनी विस्फोटक गर्जना का समर्थन किया। सभी ने अपने अपने शस्त्र संभाल लिए। मैंने भी गदा उठा ली। स्वयंवर का मंडप दूसरे ही क्षण सत्यासत्य के समरांगण में बदल गया। सभी व्यक्तियों ने उस ब्राह्मण कुमार पर आक्रमण कर दिया। वह हाथ में लिए हुए शिव धनुष चढ़ाकर असंख्य बाण छोड़ने लगा। सभी व्यक्ति उसकी ओर आगे बढ़ने लगे। इतने में अचानक ऐसी घोर ध्वनि हुई मानो झंझावात आ गया हो। भगवान अंगोछा पहने हुए एक अन्य ब्राह्मण कुमार साक्षात पर्वत जैसा दांत किटकिटाता हुआ सब पर टूट पड़ता। उसको देखते मुझको ऐसा लगने लगा कि मेरी हृदय गति कहीं रुक न जाए। उसके हाथ छः छः घंटों तक मैं गदा खेला था, वही भीम वस्त्र बदलकर दाढ़ी बढ़ाकर यहाँ आ गया था। वह कैसे आ गया, वह जीवित कैसे हुआ? पुरोचन के लाक्षागृह में फिर उसने किससे जलाया? सन और बलवत की घास को जलाया, दुर्योधन की आशा आकांक्षाओं को? सदा के अभ्यास के अनुसार मैंने अपना हाथ दाएं भुजा में बधे हुई चांदी की डिबिया में फिराने के लिए उठाया, लेकिन उसी समय न जाने कहां से एक मस्तिष्क बाण सू करता हुआ आया और ठीक मेरी भुजा में घुस गया। उसके फल से डिबिया के बंधन टूट गिरे, वह डिबिया छिटक कर कहीं नीचे गिर पड़ी। फिर न जाने किसकी किसके पैर उस पर पड़े होंगे। भुजा में लगा बाण निकालने के लिए मैंने उसका उच्च भाग हाथ से खींचा। मुझको इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वह मस्तिष्क बाण था। उसका फल मेरी भुजा में झोंका तो गड़ा रहा, टूटा हुआ पुच्छ हाथ में आ गया। अपमान के तीव्र आघात से मैं कदाचित भ्रांत हो गया, इसीलिए यह विचित्र दृश्य काल्पनिक हो गया। यह सोचकर मैंने स्वयं को झकझोरा और दूसरे ही ब्राह्मण कुमार की ओर देखा। हाँ, वह भीम ही था। उसकी आंखें आग बरसा रही थी, जैसे कोई किसान दवरी चलाते समय फसलों के पौधों को फेंकता जाता है, वैसे ही अपनी गदा के सभी प्रहार से वह सबको धराशायी कर रहा था। केवल शल्य ही किसी तरह उसके सामने टिका हुआ था। मद्य पिए हुए हाथी की तरह वह अपनी गदा की मंडल कक्षा में आने वाले प्रत्येक वीर को भीषण आघात लगा रहा था। उसके प्रहारों से घायल होकर वीर छत की ओर मुंह ऊपर कर कराहते हुए नीचे गिर रहे थे। झंझावात की तरह प्रतीत होने वाला वह महाकाय स्वयं को आवेश में लाने के लिए बीच बीच में मत्त वृषभ की तरह चिंगार रहा था। उसकी गर्जना से छत पर टंगे हुए मत्स्यंत्र की लकड़ी की शांत मछली भी थरथरा रही थी। निस्संदेह वह भीम ही था, लेकिन वह कहाँ से आया, कैसे आ गया, आकाश से या पाताल से अपनी भारी गदा से उसने साक्षात यम को भी ठोक पीट दिया था क्या? उसके नृत्य से स्वयंवर का मंडप भी लखड़ा रहा था। यदि वह उसी समय घड़ी दो घड़ी चिल्लाता व नाचता रहा तो निश्चय मंडप चारों ओर से भीतर की ओर गिर पड़ेगा। मैं विक्षिप्त नहीं हुआ था, बस यही कमी रह गई थी। भीम जीवित कैसे था? भय से थर्राता हुआ मेरा मन क्रंदन कर रहा था। रथ के चक्र के नीचे दबा हुआ पैर जैसे सुन्न हो जाता वैसे मन सुन्न हो गया था। वह तो मानो सभी को मारने के लिए अधीर हो उठा था। वह भीम था या उसका भड़का हुआ पिशाच? सत्य क्या है और स्वप्न क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा था। वारणावत की राख से उसने पुनः यह सुंदर काया कैसे प्राप्त कर ली? भेदिया वन का पूर्वचन ने धोखा दिया था या मेरा भाग्य ही प्रतिकूल था? जैसे तैसे स्वयं को संभाल कर मैं उस कोलाहल से बाहर जाने लगा। भीम मेरी ओर गुर्रा कर देखता हुआ चिल्ला रहा था, लेकिन उसके आसपास शल्य सुदामन शिशुपाल जरासंध सुषेण आदि का घेरा था। मत्सभेद करने वाला अर्जुन सरोवर के किनारे द्रौपदी के पास किसी को भी फटकने नहीं दे रहा था। वर्षा ऋतु में जैसे मेघों से जल की धाराएं गिरती हैं वैसे ही शुद्धनुष से वर्णितर बाण वर्षा कर रहा था। उसका शंख बाणों से ऊपर की छत बहुत पहले ही छिद्रमय हो गई थी। क्षण प्रति क्षण गौरे होते हुए अंधकार में अव्यवस्था करने के विचार से कुछ सेवक प्रचंड रोकने के विचार से कुछ सेवक प्रचंड ज्वालाओं वाले मशाल ले आए थे, लेकिन उस प्रकाश का उपयोग करके सभी लोग भीमार्जुन पर और अधिक वेग से आक्रमण कर रहे थे। अव्यवस्था और उपद्रव बढ़ता ही जा रहा था। मेरा मस्तक तो एकदम सुन्न हो गया था। बड़ी कठिनाई से मैं उस कोलाहल से बाहर आया। सभी राजा उठकर युद्ध करने लग गए थे, इसीलिए जहाँ आसन रखा हुआ था वह भाग अब एकदम रिक्त हो गया था। युवराज धृष्टद्युम्न और उसके पिता दोनों सबसे शांत होने की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी ध्वनि दूर से सुनाई दे रही थी। आसनों की विशाल पंक्ति में दूर एक आसन पर बैठा हुआ कर्ण मुझको दिखाई दिया। उसने दोनों हथेलियों से अपना विशाल मस्तक दबा रखा था, उसका सिर झुका हुआ था। द्रौपदी के बागवानों से घायल हुआ वीर व्याकुल होकर चिंतामग्न हो गया था। दौड़ता हुआ मैं उसके पास पहुंचा। उसके विशाल पीठ पर हाथ रखकर उसको जोर से झगड़ता हुआ मैं चिल्लाया, कर्ण अर्जुन जीवित है, उसी ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता है। मंडप में वह किसी को भी पास नहीं फटकने दे रहा। घनघोर संग्राम छिड़ गया है, सत्य क्या है यही समझ में नहीं आ रहा। शरीर पर सूखी लकड़ी का टुकड़ा माथे गिरने जैसे कोई चपल सिंह गर्जना कर उछल पड़ता है वैसे वह तत्क्षण खड़ा हुआ। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, तो आज उसको अच्छी तरह दिखा दूंगा कि इच्छा करने पर एक सुतपुत्र भी उसके सामने एक राजकन्या को उठा ले जा सकता है। विद्युत वेग से वह मुड़ा, उसका मुख तमतमा गया, कुंडल तप्त हो गए। मुझको एक ओर हटाकर मंडप के बीच बने सरोवर की ओर लपका। समीप खड़े भोजराज के हाथ से उसने उसका धनुष छीन लिया। अर्जुन के पास पहुंचते ही सबको लक्ष्य कर चिल्लाया, दूर हट जाओ। उसके शब्दों से इतनी तीव्रता थी कि क्षण भर में एक गर्जन का आभास हुआ। सब ने हाथ रोक दिए। अर्जुन यदि सच्चा क्षत्रिय है तो अपने हाथ में लगे शुधनुष से इस सुतपुत्र का सिर छेद करके पांचाली की सौंदर्योन्मत्त राजकन्या को ले जाए, नहीं तो उसको आज इसी क्षण में जाना दिखा दूंगा कि जिस अर्जुन को उसने क्षत्रिय समझकर चुना है वह इस कर्ण के बाण का एक दुर्लभ भक्ष मात्र है। वह आवेश से कह गया। अर्जुन ने विषुव धनुष को संभाल लिया। इन दोनों में युद्ध होगा यह सोचकर भय से द्रौपदी अर्जुन से चिपट गई। उसको दूर करके अर्जुन ने भी बाण चढ़ा लिया, परंतु बाण चलते ही कर्ण ने क्षण भर में उसको काट दिया। फिर दोनों एक दूसरे पर अचूक बाण की वर्षा करने लगे। मशाल के धूमिल प्रकाश में एक दूसरे पर अचूक बाण फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु बाण ऊपर ही ऊपर काटे जा रहे थे। दोनों एक दूसरे पर निरंतर घड़ी भर तक आक्रमण करते रहे, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। भीम और शल्य आपस में अब भी लड़ रहे थे। वह स्वयंवर का मंडप ध्वस्त सम्रांगण में बदल गया था। मध्य भाग का सरोवर बाणों से खचाखच भर गया था। पानी ने तटबंध तोड़ दिया था। छत छिन्न भिन्न हो गई। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जो वरमाला डाली थी वह कर्ण के बाणों से कटकर पैरों के नीचे गिर गई। युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। दोनों ही प्राणपण से प्रहार कर रहे थे। बाणों को टकराने से चिंगारियां उत्पन्न हो रही थी जो आंखों में चकाचौंध भर रही थी। अंत में कोई कुछ समझ न पाया, इसके पहले युद्ध रुक गया। सबने दोनों की ओर आश्चर्य से देखा। बाणों के ढेर पर हाथ उठाए हुए दोनों के बीच श्री कृष्ण खड़ा था। दोनों ने इतना भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी वह अपने शांत और धीमे स्वर में हंसता हुआ बोला, कर्ण अर्जुन ठहरो, अरे इतना समय तो पांचालों को दो कि तुम लोगों के लिए युद्ध के लिए बाण तैयार कर सके। शस्त्रागार के बाण अब समाप्त हो गए हैं और युद्ध शास्त्र के नियम के अनुसार एक बार प्रयुक्त बाण को फिर कोई भी योद्धा उपयोग में नहीं ला सकता। वह फिर एक बार हंसा और पीताम्बर पर पड़े हुए नीले उत्तरी को संवारता हुआ पांचालों के राजभवन से एकदम चला गया। कर्ण और अर्जुन ने चौंक कर अपने अपने तरकसों में हाथ डाला। उनके हाथ में एक भी बाण नहीं आया। विवश होकर अर्जुन ने हाथ में लगा शुधनुष नीचे फेंक दिया। द्रौपदी की वरमाला उस धनुष के नीचे आ गई। उसके धवल कमल पुष्प कुचल कर चूर चूर हो गए थे। कर्ण भी पीछे लौटा, उसने श्वेत सितर अपने कंधों पर हाथ रखा। मेरी हथेली उसके शरीर के स्पर्श मात्र से जली जा रही थी, पर मुझे उसकी चिंता नहीं थी। अर्जुन का सामना करने वाला एक वीर तो अपने पास है ही, यह प्रतीति मुझको आनंदित कर रही थी, धैर्य प्रदान कर रही थी। मैंने उससे कहा, कर्ण अब क्षण भर में ही हमें नगर में नहीं रुकना है, तुम्हारा अपमान, दुर्योधन का अपमान, अंगराज, इस घनघोर युद्ध में एक बड़ी अप्रिय घटना हो गई है। तुम्हारी सहायता को दौड़ा हुआ तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा कुछ कहते कहते झिझका, उसका सिर झुका हुआ था, आंखें भरी हुई थी। कहाँ है सुदामन? अश्वत्थामन तुम चुप क्यों हो गए? उसने सिर को झटक कर अश्वत्थामा को झकझोरते हुए कहा। उसके कुंचित स्वर्णिम केश भरे हुए श्वेत बिंदु उछल कर अश्वत्थामा के सिर पर बधे हुए वस्त्र पर गिर पड़े। कर्ण के नेत्र अंगारे की तरह धधकने लगे थे और मंडप में अपने पुत्र को ढूंढ रहे थे। तुम्हारा वह पुत्र चिर विश्रांति ले रहा है अंगराज, बाणों के ढेर में पड़े हुए सुदामन के शव के रंगली उठाते हुए अश्वत्थामा भर राय कंठ से बोला। सुदामन, सिर उठाकर पुकार का उत्तर न देने वाले अपने पुत्र को जोर से पुकारता हुआ सबको वहीं छोड़कर अपने पुत्र के शव की ओर दौड़ा। उसके पैरों के पास द्रौपदी के हाथ में लगी वरमाला पड़ी हुई थी, उसने क्रुद्ध होकर उसे पैर से ठोकर मारी। दूसरे ही क्षण उसने घुटने टेक कर अपने प्रिय पुत्र का निष्प्राण हाथ अपने हाथ में लेकर क्षण भर पहले सिंह की तरह गरजते हुए युद्ध करने वाला राधेय पुत्र शोक से सिसकने लगा। कंधों पर हाथ रखकर अश्वत्थामा ने जैसे तैसे उसको मंडप से बाहर ले आया। भिन्न भिन्न प्रकार के तीन भावनाओं के प्रहार उसके मन पर एक ही समय हुए थे, अपमान, विजय वंचना और पुत्र वियोग। मेरा संकेत पाते ही हमारे सेवकों ने सुदामन के मृतदेह को उठा लिया। कर्ण पुत्र ने हस्तिनापुर में जन्म लिया था और पांचालों के राज में उसने अपने पिता की सहायता के लिए दौड़ते हुए अंतिम सांस ली थी। नगर छोड़ते समय गंगा के तट पर उसकी पार्थिव देह का अग्नि संस्कार करते समय जो नीरव शांति सर्वत्र फैली हुई थी वह मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकूंगा। गंगा की कलकल करते हुए लहरें अवश्य कर्ण से बार बार कह रही थी, कर्ण तेरा पुत्र चला गया है, पुत्र वियोग कैसा होता है यह उस अर्जुन को उसके पुत्र वध द्वारा दिखा दे। अत्यंत धैर्यपूर्वक अंगराज ने हाथ में लिए मशाल चिता में अग्नि थी, उस चिता के आकाश को छूने वाले लपटों का विद्रूप पर भयानक प्रतिबिंब गंगा के चंचल लहरों पर लंबे आकार में पड़ रहा था। सुदामन को अग्नि को अर्पित कर खिन्न मन से हमने कापेड़ नगर छोड़ दिया। 13 उस काली रात में ही हम हस्तिनापुर लौट गए, लेकिन मन ही मन किसी बात में लग नहीं रहा था। दूध का चषक उठाया, कोई सुगंध पुष्प हाथ में लिया अथवा कुरुओं के प्रसिद्ध राजदंड की ओर देखा तो प्रत्येक वस्तु में मुझको केवल भीम ही दिखाई पड़ा। ऐसा लगता था जैसे दांत किटकिटाता हुआ वह मुझ पर टूट पड़ रहा, प्रत्येक क्षण उसकी स्मृति की ज्वाला से मुझे दग्ध कर रहा था। मैं युवराज था, मेरे केवल एक ही शब्द पर सहस्त्र योद्धा हाथों में खड्ग लेकर उस भीम का पर आक्रमण कर सकते थे। दुशासन, पितामह, गुरुद्रोण, कृप, अश्वत्थामा, अमृतवर्मा तथा कुरुओं की विशाल सेना, ऐसा मेरी सुरक्षा का ही सुदृढ़ आयोजन था। फिर भी मेरा मन भयाकुल हो गया था। कुछ भी क्यों न हो, फिर भी मनुष्य अन्य किसी के स्कंधों पर अवलंबित होकर कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। प्रत्येक को सबसे पहले अपना मन निर्भय करना पड़ता है। मैं भीम को देखकर बिखरे हुए अपने मन के सभी धागों को एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वे बहुत अधिक उलझ चुके थे। मैं बार बार स्वयं से कह रहा था, दुर्योधन तो वीर है, भीम से इतना क्यों घबराता है, तो गदा वीर है, समय आने पर सबको अलग कर हाथ में गदा घुमाते हुए बस भीम पर टूट पड़ना। इस प्रकार मन को व्याकुल मत कर, अपने मन को समझाने का बार बार प्रयत्न करना था करता, लेकिन फिर भी जैसे ग्रीष्म में मच्छर सतत आंखों के आगे चक्कर लगाता रहता है वैसे ही उस भीम की मूर्ति मेरी आंखों के आगे ही खड़ी रही। मन किसी के धैर्य बढ़ाने वाले शब्दों के लिए व्याकुल हो रहा था। मैं अनजाने में ही अपने सेवक प्रबंधन को कर्ण के पास भेजने लगा। सेवक के पहुंचने पर वह तुरंत ही आता और फिर भी दो तीन घटकाएं कैसे भी जाती उसका पता भी न चलता। मुझे यही लगता है कि उसके साथ रहने से ही जीवन सहस्त्र गुना सामर्थ्यवान हो जाता है, लेकिन मैंने उसके सामने अपने उसकी स्तुति कभी नहीं की। मैं जानता था कि पूर्वजन की तरह उसका जन्म भी केवल मेरे लिए ही था और राजा को कभी किसी की स्तुति नहीं करनी चाहिए या पाठ मुझको आर्य कणक ने पढ़ाया था। कर्ण के साथ कभी कभी अश्वत्थामा भी आने लगा। वह कभी कभी इतनी आश्चर्यजनक बातें करता कि उसको सुनते मन तल्लीन हो जाता, परंतु उसके जाते ही मुझको उसका कथन कल्पनाओं की एक रमणीय क्रीड़ा मात्र ही लगता। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद एक बार कर्ण के साथ मेरे पास आया। कर्ण यह कहने के लिए आया था कि 15 दिन बाद होने वाले नगरोत्सव में रथों की प्रतियोगिताएं रखनी चाहिए। उसे कदाचित घोड़े, रथ, अस्त्र, सूर्याराधना, धनुर्वेद और मल्लयुद्ध के अतिरिक्त इस जगत में और भी कुछ है यह ज्ञात नहीं था। मैंने उसके प्रतियोगिता के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। सहजी विनोद से मैंने उससे कहा, कर्ण संसार भी एक प्रतियोगिता है, तो फिर वो हमको जितनी ही चाहिए उतनी ही सहजता में, कर्ण बोला। ये सरल इतना सरल नहीं है, अश्वत्थामा सहज स्फूर्त भाव से बीच में ही बोला। क्यों, मैंने पूछा। यह प्रतियोगिता जिस क्षेत्र में होती है उसकी लंबाई चौड़ाई का पता किसी को भी नहीं चलता। अश्वत्थामा सदैव कुछ न कुछ रहस्य की बात करते हैं, यह अब सब लोग जान गए थे, इसलिए मैंने पूछा, ऐसा कौन सा दिव्य क्षेत्र है इस जगत में? है मन का क्षेत्र। यह इस क्षेत्र में आकांक्षाओं को सुसज्जित रथ लेकर मानव सहस्रों वर्षों से इस प्रतियोगिता में भाग लेता चला आ रहा है, परंतु काल रूपी निष्पक्ष पंच ने उसको इस प्रतियोगिता में कभी विजयी घोषित नहीं किया। अश्वत्थामा की ध्वनि पंच से भी अधिक मधुर थी। इसीलिए इस प्रतियोगिता में भाग लेना क्या छोड़ देना चाहिए, उसके विचार से सहमत नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने पूछा। कदापि नहीं, क्योंकि कर्म के अटल नियमों से प्रत्येक मनुष्य के प्राण बधे हुए हैं। मन के अति पुरातन गर्भगृह से आने वाले शुभ और अशुभ संदेशों का पालन करने वाला एक आज्ञाकारी सेवक मात्र है मनुष्य का मन। मन मन अश्वत्थामा, जिस मन की बात कर रहे हो उसके आगे आखिर कितने हैं, धागे आखिर कितने हैं उसके? उसके रहस्यमय कथन का अर्थपूर्ण रूप से मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सुवर्ण मंडित मुकुट के नीचे तुम्हारे सिर पर कितने केश हैं, क्या तुम यह ठीक ठीक बता सकते हो? मन के धागे भी उतने ही अगणित और उलझे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन ऐसे ही अद्भुत रम्य धागों का एक वस्त्र है, लेकिन यह एक बात भी एकदम उपयुक्त नहीं है। सो कैसे? बीच में कर्ण ने उससे पूछा। जीवन मन के असंख्य धागों से बना हुआ केवल एक वस्त्र ही नहीं, बल्कि ऐसे वस्त्र की एक खुल सकने वाली गांठ है, और प्रत्येक को अपनी वह गांठ अपने मन अपने ही हाथों से अंतरात्मा की आंखें खोलकर स्वयं में खोलनी पड़ती है। तो फिर संसार में सत्य क्या है जिसको तुम जीवन की गांठ कहते हो? क्या वह गांठ ही सत्य है? मैंने उसको यूं ही छेड़ा। नहीं, सत्य वह है जो शाश्वत और नित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर मुझको तो सत्य केवल एक ही लगता है, सूर्य की शंख किरण अनादिकाल से यह पृथ्वी के जीवन दान करती आती है। उनके दिव्य स्वरूप में क्या कभी परिवर्तन हुआ है? सबको स्पर्श करने का हमारा दिव्य गुणधर्म उन्होंने क्या कभी छोड़ा है? इतना निर्दोष सत्य राजन, तुम मुझे अन्य कोई दिखा सकते हो क्या? कुछ रुक कर वह फिर बोला, जीवन सूर्य से नियंत्रित होने वाला एक दिव्य प्रकाश प्रवाह है, और जो व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जान गया उसका जीवन प्रकाश का अतिरिक्त और क्या होगा? इसलिए मेरी बड़ी उत्कट इच्छा होती है कि यह कर्ण सदैव मेरे साथ ही रहे, क्योंकि वह सूर्य की अखंड आराधना करता आया है। उसकी प्रसन्न मुख मुद्रा की ओर देखो, क्या वह मुझे सूर्यबिंब जैसा नहीं लग रहा है? अश्वत्थामन, तुम जो कह रहे हो वह से पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन ठीक यही बात तुम्हारे पिता कुरुद्रोण क्यों नहीं करते? मैंने कर्ण की ओर देखते हुए अश्वत्थामा से एक चुभता हुआ प्रश्न किया। मैंने पुनः तुम्हें स्मरण करा रहा हूँ राजन, कि जीवन के मन में असंख्य धागों वस्त्र की एक गांठ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गांठ स्वयं खोलनी पड़ती है। मेरी मुझको तुम्हारी तुमको कर्ण की कर्ण को पिताजी को पिता को मेरी अन्य की सहायता यहाँ का कोई उपयोग नहीं है। उसने मुझको पुनर्निरोत्तर कर दिया, आखिर वह एक बुद्धिमान आचार्य का पुत्र था न। 14. मैं अश्वत्थामा के तत्वज्ञान की कड़ियाँ जीवन से मिलाने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वे मिल नहीं पा रही थी। उसका कहना था, जीवन मन के असंख्य भावों के धागों के वस्त्र की एक ऐसी गांठ है जो उसकी है, जिसकी है उसी को स्वयं खोलनी पड़ती है। मेरा मन इस कथन की एक भी कल्पना को मानने को तैयार नहीं था। पहली बात तो यह कि मन वस्त्र की तरह होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता था। मुझको तो वह शस्त्र की तरह लगता था, गदा की तरह। अपने मंडल की कक्षा में सदा किसी को भी आने देता है क्या? मानव का मन भी ऐसा ही होता। प्रत्येक का जीवन क्षेत्र भिन्न होता है। इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति केंद्र में स्थित रहता है तथा अपने विचारों की गदा लेकर वह उसको अपने जीवन के चारों ओर गरगर फिराता रहता है। घेरे में आने वाले प्रत्येक के सिर पर वह टकराती है, किसी का वक्ष फोड़ती है, कभी कभी किसी को चिर विश्रांति भी दे देती है। परंतु इन परिणामों का विचार कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह विचार करते रहे तब तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। अश्वत्थामा के विचारों को मैं भूल जाने का प्रयत्न करता, परंतु फिर भी वे सतत मेरी स्मृति पर छाए रहते और तब मैं परेशान हो जाता। हार कर मैं झुंझला उठता और निर्णय देता, अश्वत्थामा तुम्हारे कथनानुसार जीवन यदि असंख्य धागों के वस्त्र की एक गांठ है तो मैं भी उसको स्वीकार करता हूँ, परंतु उस गांठ को मैं खोलूंगा नहीं, उसको मैं और अधिक कसूंगा और उसमें उस राक्षस भीम के प्राणों को पकड़कर तब तक कसता जाऊंगा जब तक उसके प्राण निकल न जाए। भीम को जीवन की गांठ में पकड़ने का विचार जब मेरे मन में आया तब मैं निश्चिंत हो गया। एक जाल में से भीम निकल गया था, कोई बात नहीं, मैंने उसके लिए दूसरा सुदृढ़ जाल बनाने का निश्चय किया। मैं उसके लिए जीवन भर जाल पर जाल तैयार करता ही रहूंगा। जब उसकी कटे हुई कनिष्ठिका के लिए मुझको केवल चांदी की टिपिया ही परमानी थी, बल्कि मैं उसके मस्तक को भी कुरुओं के सिंहासन के नीचे गाड़ देना चाहता था, क्योंकि पांचाली के स्वयंवर में उसने लिया अर्जुन ने पांचाली को जीत लिया था, और अंत में जो युद्ध हुआ था उसमें उद्दंड भीम ने मेरी पीठ में गदा का एक प्रबल प्रहार किया था। एक बात और हुई थी जिसके संबंध में मेरा विचार था कि मेरा भाग्य बलवान था, द्रौपदी के द्वारा कर्ण का अपमान। समस्त वीरों के सम्मुख यह दुर्बुद्धि ईश्वर ने ही उसे दी थी। उस कर्ण को उसके उस अपमान की निरंतर स्मृति कराकर मैं उस शक्तिशाली वीर के पुरुषार्थ को निरंतर जगाता रहूंगा, और तब अवसर मिलते ही कर्ण द्रौपदी से भी प्रतिशोध देगा। वह यद्यपि इस समय भी मेरा दायां हाथ बना हुआ है, तथापि मुझको विश्वास था कि एक दिन पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। कर्ण, सुरभक्त कर्ण, कवच कुंडलधारी कर्ण, विशाल शरीर वाला कर्ण दुर्योधन की मुट्ठी में आ जाएगा। तब फिर उसका जीवन जैसा मैं चाहूंगा वैसा, बिल्कुल वैसा ही बनता जाएगा। हस्तिनापुर का स्वामी और उसकी मुट्ठी में कर्ण, दुर्योधन के इन सुख सपनों को संसार साकार देखेगा। इन समस्त उथल पुथल में एक अत्यंत अप्रिय घटना भूली नहीं जा सकती थी। स्वयंवर के बाद युद्ध में अर्जुन ने कर्ण के पुत्र को सुदामन को अपने अमोघ बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया था। कुछ बाण तो उसके किशोर और युवा स्वच्छ मुखमंडल में भी घुस गए थे। उस वीर पुत्र ने इस संसार को भी देखा ही कितना था। उसके मृत्यु का समर्थन कर अर्जुन को वीर कौन कहेगा। अब यदि कर्ण ने अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा भी कर ली तो इसमें भी वह आतताई नहीं कहा जा सकता। केवल आदर्श वचनों से नीति के नियम नहीं बना करते, वे जीवन के जीते जागते अनुभव से भी बना करते हैं।